یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 672.
نومبر 5 دی ایئر 2004، مائی وائز ان آسٹین ان ٹیکساس. یا علی مدد، آسٹین جماعت کو میرا سلام. سکھی رہو، آباد رہو، دین و دنیا کی مولا نعمت دے وے، تندرستی دے وے، بلائے آفتیں دور کرے، ایمان زیادہ کرے، دسواں شکر اتنا پورا رکھے، اور مولا روزی رزق میں برکت. جیرے والا ایک دان مہارس پیر بھنا وے صدر، مرا مومن بھائی تمہیں امی رس پی کہ یہ بہت مزے کا گنان مہارس پیر صدر دین نے بولا ہے، مومن بھائی امیرس پیوا نے آو، حاضر جاموں نے پائیں پڑی، ودھاو تے قائم سوامی. کیسے شبد ہیں، کتنا اچھا پیغام ہے اس میں. آج مندر رڑیاموں نہ دیسے، میں دیکھ رہا ہوں دندر جماعت خانہ بھرا ہوا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں. یہ مندر ہے، ایکچولی مندر کا مطلب مکان ہوتا ہے، لیکن یوز کے اندر مندر کیا آتا ہے کہ جہاں خدا کا نام دیا جائے، عبادت کی جائے. یہ جماعت خانہ مندر ہے. رڑیاؤں ندی سے بہت خوشی والا دکھتا ہے، خوبصورت دکھتا ہے، اور اس کے اندر روڑا روڑا کہتے ہیں اچھے کو. سنت پدھارے آج سادھو پڑھا گیا، یعنی ان مومنوں کو جو آپ لوگ بھیجے نا، اس کی طرف اشارہ ہے پیر صدر دین کا، کہ نیک اچھے پاک دل والے، عبادت کرنے والے، مذہب پہ چلنے والے یہ سنت سادھو آئے ہیں. ہمارے ان گنہانوں کے اندر جو پیروں نے پیغام دیا ہے، ہم لوگ دھیان سے نہیں پڑھتے، سمجھ نہیں آتی، لیکن جب ہم دھیان سے پڑھتے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی ہے تو پیروں نے کیسے کیسے پیغام دیے ہیں، اور کتنے محبت اور پیار سے ہمارے پیروں نے بلایا ہے. جیرے والا اے میرے پیارے، جیرے بھائی رے، اے مومن، مومن من اے مجان جو، اس طرح سے ہمیں پکارا محبت اور پیار سے. یہ جو آج ہم امی پیتے ہیں، ہم گٹھ پاٹ نہیں پیتے، نیاز پیتے ہیں، امی پیتے ہیں. گٹھ پاٹ جو ہے نا، وہ ٹھام واسن کا نام ہے. प्लेटें हैं, प्यालियां हैं, कुंभ है, इसको घटपट कहते हैं। वो जो पानी नूर का है उसको घटपट नहीं कहते। और आज मैंने सुना, इसने बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से बोला, घटपट स्थापना अलग मेरा। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा बोलते हैं, न्यास स्थापना अलग मेरा, ये गलत है। न्यास तो अमी है, नूर है, और न्यास मौला खुद बनाता है, हम क्या उसकी स्थापना करेंगे, वो तो पाक पवित्र चीज है। यहाँ स्थापना का मतलब यह है कि हम घटपाट की क्रिया शुरू करते हैं, और जब हम सार न्यास भी लेते हैं तो फिर पुकार होती है, घटपाट उठापन जी क्रिया, यानी अभी सब ने पी लिया है, अब ये ठाम वासन हम इकट्ठे करते हैं, यानी कि घटपाट की क्रिया जो है ये बंद होती है, अच्छी तरह से बंद करके फिर हम दुआ मांगते हैं, दुआ जो अलग मेरे घटपाट कायम करें जी, न्याज कायम करें जी, नहीं घटपाट कायम करें जी, के मतलब यह है कि घटपाट की ये जो क्रिया है ये हमेशा रहने वाली है, क्योंकि ये क्रिया बहुत ऊंची, हमारे मजहब में दुआ तीन वक्त की बड़ी जरूरी है, दुआ का दर्जा बहुत है, और ईमान सलामत रखने के लिए दुआ सख्त जरूरी है। मौला कहते हैं कि जो आदमी दुआ नहीं पढ़ता उसका ईमान अधूरा है, उसका ईमान ढचू पचू है। कहीं भी हो, अगर जमात ने 7 बजे का टाइम रखा है तो दिनदारों किधर भी हो 7 बजे दुआ पढ़ो। अगर जमात ने 7:30 का टाइम रखा है तो 7:30 का, आज जुमा है तो 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे वक्त पे दुआ पढ़ो। जमात खाने नहीं पहुंच सकते, रस्ते में हो तो चलते चलते दुआ पढ़ो, बाइसाइकिल चला रहे हो तो दुआ का वक्त आ गया तो साइकिल चलाते रहो, दुआ पढ़ते रहो, मोटर गाड़ी चला रहे हो तो ड्राइविंग करते रहो, दुआ पढ़ो, दुआ का टाइम कभी नहीं छूटे। मैं आपको एक बात सुनाऊं, बहुत सी ऐसी चीजें दीनदारों किताबों में लिखी हुई नहीं है, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं ना वडील, वो वडील सुनाते हैं, बाप से बेटा सुनता है, वो बेटा अपने बेटे को सुनाता है, इस तरह से इसको बोलते हैं ओरल हिस्ट्री। कई चीजें नहीं लिखी जाती हैं और ओरल हिस्ट्री में आती हैं। बंबई में हमारे एक बुजुर्ग थे सैयद मुश्ताक अली दीदार अली, ये जो मुश्ताक अली थे इनके बापा थे दीदार अली। जब ईरान से मौलाना हसन अली शाह बाप 1842 में 1842 में आए तो उनके साथ 2000 सोल्जर थे, खुद की फैमिली थी, इस तरह लगभग 2500-3000 का ये रसाला इंडिया आया, इनमें ये सैयद दीदार अली भी थे। और जमात के अंदर जो इस्लामिक चीजें होती थी, नमाज है, निकाह है, फातिहा वगैरह है, तो ये दीदार अली बोला करते थे। तो गुजर गए तो उनके बेटे को इमाम ने, सैयद मुश्ताक अली को इमाम ने मुकर्रर किया। ये सैयद मुश्ताक अली बड़े बुजुर्ग थे, 96 इयर्स की एज में गुजर गए, और मुझे ऐसा ख्याल है कि 50 से पहले गुजर गए, 49 या 48 में गुजर गए। मौलाना हसन अली शाह, मौलाना अली शाह, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के तीन जोमे इसने देखे, तीन जोमों की खिदमत की। तो ये मेरे से बड़ा प्यार करते थे। मौलाना इनको हुक्म किया हुआ था कि जून और जुलाई 2 महीने तुम मैथरान जाया करो, ठंडी जगह है, तो जाया करते थे। तो कभी कभी मुझे कॉलेज से छुट्टियां होती तो मैं भी कभी उनसे चला जाता था, सारा दिन मौला की बातें होती थी, इन्होंने बात सुनाई, मौला इनकी रूह को अपने नूर में रखे। जब भी मौलाना अली शाह पीरी झोमा में थे तो जमात खाने आया करते थे, और जब ये दुआ का टाइम होता था तो मौला नीचे मुखी कमरिया के बीच में जमीन पे बैठ के खुद दुआ पढ़ाया करते थे। आपको याद है, आप में से 60 वर्ष के ऊपर के होगा, तो हमारी जो पुरानी दुआ थी हिंदी दुआ, उस दुआ में हम पढ़ते थे। पहले बोलते थे, दुआ पढ़ो दुआ पढ़ो दुआ पढ़ो, औला मेरा हक नाम गिनो मौला अली ईमान सजा जिना। इसके बाद तस्बीह होती थी और फिर हम दुआ शुरू करते थे। तकसीरदार बंदो सिरता पागुनेगार, या शातु बख्शी बख्शनहार, दुआ तो पीर पड़े बंदो बेनती करे। दुआ पढ़ाना पीर का काम है। आप कभी हिस्ट्री पढ़ो तो नमाज रसूलुल्लाह खुद पढ़ाया करते थे, किसी को कहते नहीं थे कि तू नमाज पढ़ा। जमात के अंदर जो दुआ पढ़ते हैं ना, वो पीर पढ़ता है, लेकिन पीर जाहिर माने हमारे सामने नहीं है। तो जो लड़का लड़की दुआ पढ़ाते हैं, औरत मर्द जो भी, वो उस वक्त पीर के जोमे पे बैठा है, पीर की गादी पे बैठा है। आपने ख्याल किया कभी, वो दुआ नहीं पढ़ा सकता। मुखी साहब हमारे, हाँ हमारे शागिर्द जो अभी मुखी साहब के पास, मुखी कमड़िया के पास जो इमाम का अमर है हुक्म, उसने वो हुक्म ट्रांसफर करके इसको दिया कि जो दुआ पढ़ाता है अमर शाह पीर जो। तो मुखी का अमर इसके पास आया, ये पीर की तरफ से दुआ पढ़ाता है, बहुत बड़ा दर्जा है। वो आदमी जो दुआ पढ़ाता है उस वक्त वो पीर की गादी पे बैठा है, और खुद मुखी कांवड़िया भी उसको फॉलो करते हैं। दुआ पूरी हो गई तो वो वापस अमर मुखी को ट्रांसफर हो जाता है, और मुखी से फिर तस्बीह निकालते हैं। हमारे मजहब की जो क्रियाकर्म रीत रस्म है उसके पीछे बड़े बड़े भेद है, सिग्निफिकेंस है। तो मैं ये कहता हूं इसलिए कि जो दुआ पढ़ाने वाले हैं उनके कपड़े साफ होने चाहिए, बदन पाक होना चाहिए, और अगर उसको वारा मिला है तो घर से अच्छी तरह से नहा धो के आओ। इसी तरह से घटपाट वाला भी है, घटपाट की क्रिया के मैं आपको समझाता हूं। ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। सही साहब कहते हैं कि एक दिन मौलाना अली शामाबा पीरी जामे में थे, जमात खाने आए तो जमात दुआ पढ़ रही थी। सरकार आए, चुपचाप नीचे बैठ गए, और जब ये दुआ पूरी हो गई खाना वदान कही और उठ के कुर्सी पर बैठे। यही इस बात को मैं यहां अधूरी छोड़ता हूं। मुझे एक बात याद आ गई, 1974 में मौलाना हजर इमाम किगाली गए, किगाली में नवा जमाखाना खोलना था। जमात बहुत आ गई इर्द गिर्द से, जमाखाना इतना बड़ा नहीं था। तो वहां राजेंस की बहुत बड़ी दुकान थी, उस दुकान को साफ करके उसके अंदर जमात बिठाई गई। मौलाना शाह करीम सलवातुल्लाह अलैह ने अल्लाह ने कहा मैं 7 बजे आऊंगा, 7 बजे दुआ का टाइम है। मुख्य सुल्तान अली थे, सुल्तान अली राजन, ये कहता है मिश्नर साहब करो करना सी मौला दुआ के टाइम में आ गए हो, अच्छे दुआ पड़ी खप गए, और मौला अच्छे तो अच्छे मौला भले अच्छे कुर्सी रखी दियो मौला अच्छी ने वही रंधा। 10 मिनट कम थे, 7 में मैंने कहा मुख्य साहब बन सके तो दुआ पढ़ा डाले। अच्छा दुआ शुरू हुई, पढ़ाने वाले ने थोड़ा फास्ट पढ़ी और अभी भी 4 मिनट कम थे। मुझे कहते हैं दूसरी दुआ पढ़ाई दस ना चाहो क्या, किस्मत देखो। दूसरी दुआ में हमारी तस्बीह है ना, 5वें ये तस्बीह शुरू हुई और धनी माँ बाप अंदर आया तो मुखी तो भूल गया कि हम दुआ पढ़ रहे हैं, उठने लगे तो मैंने पकड़ के बिठा दिया। मौला चुपचाप आके कुर्सी पे बैठ गया और बाकी का वो पाठ था 6वां पाठ वो इमाम की हाजिरी में, क्या मजा आया उस दुआ में। दुआ खत्म हो गई तो खाना वजान हाजिर इमाम ने फरमाया, बहुत राजी हो। तो मौला अली शाह जमात खाने में आए। देखो एक बात और कह दो, इमाम गत में अकेला कभी नहीं आएगा, पीर साथ होना चाहिए। पीर अकेला आता है भले इमाम जाहिर बाने उसके साथ ना आवे, लेकिन इमाम अगर दो जवाब में जुदे हैं शाह और पीर है तो अगर हसन अली शाह इमाम थे वो कभी जमात खाने में अकेले नहीं आई, पीर होना ही चाहिए क्योंकि बख्शामनी देने वाला पीर है। और इमाम का जो जुमा है वो सूरज की तरह गर्म जुमा है। अगर अकेला इमाम हो गए तो हम उसके नजदीक जा नहीं सकते, हिम्मत भी नहीं होती, ताकत भी नहीं होती, जबान भी नहीं खुलती। मैंने ऐसे बड़े बड़े फर्स्ट क्लास स्पीकर ऑरेटर्स देखे हैं, जब इमाम के हुजूर में खड़े होते हैं तो जबान थर थर आती है, योर हाइनेस, इस तरह से हो जाते हैं। लेकिन पीर जो आता है वो अकेला आता है, पीर है, मां है, पीर प्यार करने वाला है, पीर गुनाह बख्शता है, पीर हमारी सब गलतियां कबूल कर लेता है। तो मौलाना अली शाह मां बाप आए, दुआ पढ़ी जाती थी, नीचे बैठे खड़े हुए कुर्सी पर बैठे दुआ सीखते, अभी दुआ पढ़ी थी ना, मैं जो अभी आपको कह रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, खास तौर पे उनके लिए कि जो दुआ चूक जाते हैं या दुआ नहीं पढ़ते हैं। अली शाह मां बाप खड़े हुए तो हाजी कमड़िया अली शाह के लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ, मौलाना अली शाह मौलाना हसन अली शाह पर्शियन भाषा में फारसी में फरमान करते थे और हाजी कमड़िया उसका कच्छी में ट्रांसलेशन करते थे। फरमान किया जमात को दुआ से तो अला मेरे हजरत मौलाना धनी सलामत दातार पीर अली शाह मां बाप फरमाइंता खाना वादा, अभी फरमान शुरू होता है। मां बाप कहते हैं एक बाप गुजर गया, बेटा छोटा छोड़ गया, मां ने बहुत मुसीबत उठा के बर्तन बर्तन साफ करके दूसरे के कपड़े दूसरे का घर मजूरी करके इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया। बच्चा जवान हुआ तो मां को ऐसा हुआ इसकी शादी कर दो, बहुला नेचुरल है। अली शाह मां बाप फरमाया उसने बच्चे की बड़े प्रेम हरक के साथ उसकी शादी की है। जमात शादी की रात दूल्हा मर गया, उस मां को कितना दुख हुआ होगा। अली शाह मां बाप जमात को देख के है जमात उस मां को कितना दुख हुआ होगा, जिंदगी भर मेहनत करके अपने बेटे की शादी की और रात को शादी की रात बेटा गुजर गया। है जमात बयत करने के बाद तुम अगर दुआ नहीं पढ़ोगे तो उस मां को जो दुख हुआ ना, ऐसा दुख होगा। जवान बेटे की शादी की रात को गुजर जाए, उस मां को कितना रंज होता है। माँ बाप कहते हैं कयामत के दिन जब हिसाब होगा जिसने दुआ नहीं पढ़ी, उसको ऐसा रंज होगा। मजहब लेके अगर हम उस पर नहीं चलते यार, ऐ मोमिनों, हम अपने कलेजे में छुरी मारते हैं। मजहब लिया है तो उसको पाड़ो, और हमें मालूम नहीं कि यह मजहब कैसा है। मैं अपनी बाजों में बहुत दफा बोला करता हूं कि यह नबियों का मजहब जो हमको मिला है, यह रसूलों का, फरिश्तों का दीन है कि जो हमको हमारे पीरों ने हमारे ऊपर रहम करके दिया। इस मजहब पे अमल करो। दुआ ईमान की सलामती की चाबी है। मौलाना सुल्तान अहमद शाह दफ्तर फरमाया कि दो इन वक्त की, तीन वक्त की दुआ और दसवंद अपनी कमानी में से दो पिलर हैं कि जिस पे तुम्हारा ईमान टिका है। ईमान की सलामती की सनद यह है कि तीन वक्त की दुआ पढ़ो और दसवंद माल वाजब जरूर अदा करो। दसवंद उसका हक है। दसवंद हमारे मजहब की जान है। दसवंद हमारे ईमान का नूर है। दसवंद इमाम का खाना है। जो दसवंद नहीं देता वो इमाम का खाना छीनता है। दसवंद हमारे दिल के अंदर नूर पैदा करता है। दसवंद बिना दीन न जानो फलते नहीं फले। फिर कहते हैं कि जो दसवंद है ना, दसवंद इमाम की खुराक है। दसवंद शाहजीन आहार कहिए, आहार कहते हैं खाने को। मेरे पास मेरे भाई बहन बच्चे सब आते हैं। कोई जब भी दुखी होता है ना तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता है, तेरी दसवंद कैसी है? इसमें खास करके रोजी रिजक अगर खराब हो जाए, यानी खाने के वांदे पड़ जाए, तो याद रखो उसने जरूर दसवंद खाई है। दसवंद खाई जे मोमन का हासे ते हो से कौरवों नी जोड़। ऐ मोहम्मद, इनसे दसवंद लेके इनके लिए दुआ कर तो ये लोग गुरोह में यानी बढ़ते रहे। हमारे ही मजहब में दसवंद नहीं, इस्लाम की बुनियाद में दसवंद है, लेकिन ये मुसलमान भूल चुके हैं। जो ही नबी ने आंख बंद की ये लोग भाग गए। पांच वक्त की नमाज पढ़ ली, बहुत बड़ा आलिम हो गया वो। ओहो, पांच वक्त का नमाजी यानी कोई फरिश्ता हो गया। आपको मालूम है, मौला के रहमत से मैंने दो तीन जगह ये कहा है कि मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक मैं तमाम इस्लामी मुल्कों में गया हूं, 60% 60% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, एक भी नहीं, 60%। और बाकी जो 40% हैं उनके अंदर आधे एक दो नमाज पढ़ लेते हैं, आधे नहीं, इससे भी ज्यादा। हार्डली सारे मुसलमान दुनिया के अंदर 10-15% से ज्यादा पांच वक्त के नमाजी नहीं है। ये मेरा पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है और मैं सिर्फ अपनी जमात में खड़े होकर बोलता हूं, ऐसा नहीं। मुसलमानों के 2-2 हजार 3-3 हजार के गैदरिंग के अंदर मैंने ये बातें कही हैं। मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन हमको देखते हैं, तुम लोग मुसलमान नहीं, क्यों भाई तुम नमाज नहीं पढ़ते? मेरे मौला ने बहुत कर्म किया है, खुदा की कसम मेरे पास कोई आता है उसका मुंह बंद करा देता है। अगर कोई आदमी आपको कहे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, किधर भी, कि तुम इस्माइली लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्लाह रसूल की कसम, तेरे माँ बाप की कसम, तू बोल तू पांच वक्त की नमाज पढ़ता है, भाग जाएगा। इस किस्म के वाकयात मेरे साथ बने। नमाज सिर्फ मोहम्मद पाक रसूल ने शुरू नहीं की, अरे जब दुनिया भी नहीं बनी थी और जीव पैदा किए तो वो जीव नमाज पढ़ते थे। अल्लाह कहता है कि ये पशु पंछी परिंदे झाड़ और माउंटेन्स जो है कुरान में है, ये वो अल्लाह का वखान करते हैं। नमाज का जो लफ्ज है वो कुरान में नहीं, उसमें है सलात, और सलात का मतलब है भीख मांगना, दुआ मांगना। हमारे इमामों ने हमको दुआ इसलिए दी कि हमारे अंदर और दूसरे मुसलमानों में ये डिफरेंस हो जाए कि हम दुआ पढ़ते हैं, तुम नमाज पढ़ते हो। कम या यू नो दुआ, हाउ मेनी पार्ट? सिक्स पार्ट। हमारी दुआ में छह पार्ट है, तीन वक्त की दुआ में हम 18 पार्ट पढ़ते हैं। अरबी जबान के अंदर पार्ट को कहते हैं रकात। नमाज में खड़े होते हैं, शिया लोग ऐसा हाथ रखते हैं, सुन्नी लोग ऐसा हाथ रखते हैं, सूरत अलहम्द की पढ़ते हैं और उसके बाद एकाद कुरान की आयत पढ़ के घुटनों के ऊपर हाथ रख के रुकू करते हैं, फिर खड़े होके सजदा करते हैं और दो सजदे करते हैं, फिर खड़े होते हैं। ये एक पार्ट है, एक रकात है। पांच रकात, पांच वक्त की नमाजों में 17 रकात है, 17, 10-12 नहीं, 17 रकाते हैं। पांच वक्त की नमाजों में हमारी तीन नमाजों में 18 रकात है, उनकी पांच नमाजों से ज्यादा हम एक रकात ज्यादा पढ़ते हैं। भले हम तीन वक्त पढ़ते हैं, और इस्लाम में रजा है, इजाजत है ये कि तुम दो दुआएं, दो नमाजें मिला के पढ़ सकते हो, या एडवांस में या कोई पीछे भूली हुई हो गए। यानी सुबह की नमाज के अंदर आप दोपहर की जो नमाज है उसको मिला के सुबह की नमाज के साथ पढ़ सकते हो, और जो असर की नमाज है 4:30 की, वो लेट हो गई काम काज के अंदर कुछ नहीं, तो मगरिब की नमाज के अंदर ये भूली हुई नमाज जो लेट हो गई उसको मिक्स करके पढ़ सकते हो। यानी तीन वक्त में पांच नमाजें पढ़ सकते हो। इस्लाम में इस बात की इजाजत है। इनको कहते हैं जमा बैनुल सलातैन, यूनियन बिटवीन टू नमाज। हमको हमारे पीरों ने कितनी सहलाई कर दी कि हम सुबह जो नमाज पढ़ते हैं, फिर शाम को पढ़ते हैं, रात को पढ़ते हैं, इनमें हम 18 रकात पढ़ते हैं और वो पांच वक्त मिला के हमारे से एक रकात कम पढ़ते हैं। अगर मौलाना सुल्तान अहमद शाह फरमाते हैं, सॉरी, अगर मौला कहते हैं तुम अपना मजहब बराबर जानो तो दुनिया का कोई आदमी तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगा। हमारे मजहब की खूबियां बेहिसाब हैं, और हमारे मजहब को हमारे इमामों ने, हमारे पीरों ने इस तरह से घड़ दिया है कि हमारे लिए सहला हो जाए। वल्ला बिल्ला, मौला के दरबार में खड़ा हूं, ये हाजिर इमाम का दरबार है और वो यहां बैठा है, मेरी बात सुन रहा है। सुन क्या रहा है? माइक्रोफोन उसके पास है, लाउड स्पीकर यहां है, बोलता हुआ है। ए मोमिना, मैं बहुत फख्र करता हूं اپنے مذہب کے اوپر. مسلمانوں کی 99% آبادی زکوٰۃ نہیں دیتی. زکوٰۃ کیا ہے؟ دسوت. لیکن ان کی اور ہماری دسوت میں فرق ہے. قرآن میں خدا تعالیٰ نے ہم کو خمس کا ذکر کیا ہے. خمس یعنی 1/5 20%. میں آج ہی 2-3 دن پہلے اس کا خلاصہ کر چکا ہوں اور واپس ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ینگسٹرز کو پتہ لگے. ہم کو اللہ کہتا ہے تم اپنی آمدنی میں سے 20% جدا کرو. 10% عشر اللہ ہے, خدا کا حق ہے جو ہم امام کو دیتے ہیں. 80% پیر کا حق ہے کہ جو مذہب کی پروپیگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. 12.5% ہوئے, یہ ہماری دسوت ہے. باقی جو 7.5% ہے, خدا کہتا ہے تمہاری فیملی میں, تمہارے رشتہ داروں میں, تمہارے دوستوں میں, تمہارے پڑوسیوں میں جو دکھی ہیں, یہ 7.5% میں ان کی مدد کرو. ہم تو 7.5% بھی کھا جاتے ہیں اور کھانے والے تو 10% بھی کھا جاتے ہیں, لیکن حکم ہے تمہاری آمدنی کا 20% یہاں خرچ کرو. 7.5% خیرات کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کے لیے راضی خوشی سے خرچ کرو, تو تمہیں برکت ملتی رہے گی, گرو ہو گے, اوپر چڑھو گے. اے مومنوں, ہمیشہ سے ہمارے پیروں نے, ہمارے اماموں نے ہمیں حق کے اوپر رکھا ہے. ہمارے دوسرے مسلمان بھائی جو تھے وہ تیری میری میں پڑ گئے, پولیٹکس میں پڑ گئے, مذہب کا جو ایسنس تھا اس کو بھول گئے. میری ایک سلینگ لینگویج ہے, استغفر اللہ, سلینگ تو نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ ایک چاکلیٹ منہ میں ڈالو تو کس طرح اس کو چوستے رہتے ہو. اے مومنوں, مذہب کو چاکلیٹ کی طرح چوسو. اس کے ہر ایک انگریڈینٹس کا مزہ اٹھاؤ. مذہب ہمارا بہت خوبصورت ہے, ہمارا مذہب بہت اچھا ہے, ہمیں سکھ دیتا ہے, سکون اور شانتی دیتا ہے. مولا کو یاد کر کے سجدہ کرو. پیاسے کو پانی ملے, اس طرح سے اس کے دل میں شانتی ہوتی ہے. اسماعیلی بچہ مولا کا, اگر اپنے مذہب پہ چلتا ہے تو وہ کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوگا, اس کو منجھارا نہیں ہوگا, اس کو بھے خوف ڈر نہیں ہوگا, اس کو ڈپریشن نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ہر وقت اپنی ماں کی گود میں سویا ہے. ایسا بچہ ہے. شاہ پیر ہماری ماں باپ ہے, ہمارا جو پیر ہے وہ ہماری ماں ہے, ہم اس کی گود میں سوئے ہیں, ہمیں کوئی ڈر ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا, ہمارا جو مومن ہے وہ دنیا میں مستانہ سی کی طرح, ایسا شیر کہ جس کا دبدبا ہے اور سب اس سے ڈرتے ہیں, اس طرح سے وہ دنیا میں گھومتا ہے, مستانہ سی. فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں, فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں, تینے دیو لوگ پرنام کرے ہے نا گنا. امام کہتا ہے فرشتے اسے سلام کرتے ہیں, اور پیر کہتے ہیں تینے دیو لوگ پرنام کرتے ہیں. اسماعیلی بچہ حضرت امام کا روحانی بچہ ہے. ہم لوگ حضرت امام کے روحانی بچے ہیں, تو یہ بادشاہ ہے, ہے سلطان العظیم ہے. تو بادشاہ کے بچے پرنس نہیں ہوتے, ہوتے ہیں نا. ہم روحانی پرنس ہیں, ہم روحانی شہزادے شہزادیاں ہیں. کیا ہمارے لکشن, ہمارا کیریکٹر, ہمارا اعمال, ہماری بیہیویئر شہزادے جیسا ہے؟ حضرت امام کے مرید ہیں اور ہم روحانی شہزادے ہیں, ہمارا بیہیویئر, ہماری تھنکنگ, ہمارا ایکشن ہے ایسا؟ نہیں ہے, موسٹلی نہیں ہے. ہیں ہماری جماعت کے اندر اچھے لوگ, الحمدللہ ان کی عبادت بندگی سے جماعت کو فائدہ ہوتا ہے. یہ آج اس وقت شاید 1500-1600 آدمی ہوں گے, اندازہ کرتا ہوں, میں محسوس کرتا ہوں, فیل کرتا ہوں کہ الحمدللہ औरतों में मर्दों में ऐसे कुछ स्टार्स चमक रहे हैं, मैं उनकी चमक देख रहा हूँ, फील करता हूँ। ये वो लोग हैं कि जब जमात खाने आते हैं, दुआएं मांगते हैं दुनिया भर की जमात के लिए, तो इनकी इबादत बंदगी से दुआएं कबूल होती हैं। कभी कभी ऐसा जीव पैदा होता है, एक महीने का बच्चा है, माँ उसको जमात खाने ले आई है, उधर पीछे कहीं बैठी है, बच्चा गोद में सोया है, दुआ पढ़ रही है, ए मोमिना क्या पता कि इस एक महीने के बच्चे के कारण सारी जमात की दुआ कबूल होती है। उसको तो सोया है मगर उसका जीव इतना ऊंचा है, माँ को भी शायद पता नहीं है। जमात में जो लोग आते हैं उनमें से जो मालदार होते हैं, रूहानियत में मालदार, डॉलर की बात नहीं करता, ये मालदार लोगों की हाजिरी में वो जो रूहानी खाना खाते हैं उसमें सारी जमात खाती है। अगर आप सदा कंबर के साथ गवर्नर या किसी और राजा के पास चले जाओ तो उसके साथ, वो कहते हैं ना, सेड़ी के साथ एड़ी भी चली जाएगा ना। तो ये जो लोग आते हैं जमात खाने के अंदर, आला किस्म के लोग जो होते हैं जिनकी इबादत बंदगी से सारी जमात को फायदा मिलता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जमात खाने में आओ। हमारी कमी, हमारी कचास, हमारी कमजोरी ढक जाएगी, उनकी खातिर हमको भी दीदार का लाभ मिलता है। इसलिए हुक्म है हमारे मजहब के अंदर कि सुबह शाम जमात खाने आओ। कोई कारण से, इल्म के, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के कारण है कि कोई नौकरी के कारण है, अगर कोई शाम को नहीं आ सकता तो दिनदारो सुबह को आओ। 24 घंटे में एक दफा जरूर इस मौला की चौखट पे आके सर रगड़ो, दुआ मांगो, दीन दुनिया की बरकतें मिले, हिम्मत मिले, ताकत मिले, हमारे दिल की बदियां बुराइयां दूर हो जाएं। आधी रोटी खाओ, ये भी मेरी एक कहावत है, मैं बहुत बहुत कहता हूं, आधी रोटी खाओ सुख की खाओ, आधी रोटी खाओ मगर सुख की खाओ। लालच करके, मोह माया करके एक रोटी मिले वो हजम नहीं होगी। इमाम के घर के अंदर जो बरकतें और मोती मिलते हैं, इधर आके ये हम नूर पीते हैं, अमी पीते हैं, ये नूर पीते हैं, इसको हमारे पीरों ने नूर, नूर वेला नूर पियो करियो मन आनंद छिए, कितने अच्छे गिनाने हैं, राग भी अच्छे हैं। इस नूर की तुफैल से हमारा दिल साफ होता है। मौलाना अली शाह फरमाया कि न्याज जब जमात पीती है वो न्याज आबे सफा है, SFA, तुम्हारा दिल साफ होता है, तुम्हारे ख्याल पाक होते हैं, तुम्हारे अंदर की बदियां बुराइयां साफ होती हैं। लेकिन जब उठापन की दुआ हो जाती तो वो आबे शफा है, SHAFA। शफा कहते हैं बीमारी दूर करने वाला। मैंने बहुत दफा अपने बहन भाइयों को जो मेरे पास आके मेरी सलाह लेते हैं तो मैं उनको यही कहता हूं, सुबह शाम दो वक्त जमात खाने जाओ, पहले भी न्याज पियो लेकिन जब ये स्थापना उठापना हो जाए तो उस वक्त जाके वो न्याज पियो, तो तुम्हारी बीमारियां दूर होंगी। इसमें पर्टिकुलरली मेंटल ट्रबल के जो लोग हैं, जिनको मुंझारा होता है, फ्रस्ट्रेट, डिप्रेशन है, वो न्याज पियो। मेरे पास एक केस आया मुंबासा में, 18 साल की लड़की को जिन ने पकड़ा, जिन, ऐसे केसेस हो जाते हैं। इसकी मां मेरे पास लेके आई, काउंट मोहम्मद अली ढाला के घर पे मैं रहता था उस वक्त। काउंट नान ने मुझे पूछा कि एक भाई आई आपको मिलना चाहती है, आया क्या है? वो लड़की का जो चेहरा देख के मैं समझ गया, उसकी मां को मैंने पूछा कब से है ये, कहती एक महीना डेढ़ महीना हो गया, 18 साल की लड़की खाना खावे तो जाने 5 आदमी जवान हट्टे कट्टों का खाना खा जावे, एक 18 वर्ष की बच्ची 5 आदमी का खाना खा जावे, कहाँ जाता है? और जिन खा जाता है। उसको मैंने कहा 3 वक्त नादली पढ़ के सुबह दोपहर शाम और सो जावे, उसके बाद इस पे नादली पढ़ो, छुकारा मारो। ये नादली हमारी पुरानी पेशादर्जन की बनाई हुई दुआ के अंदर थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नाद अली मजहर अजायब तज दहू औन लकाफिन नवायब कुल हमिन व गमिन सियंजली बिबिला तिका या अली ओ या अली ओ या अली। ये नाद 3 दफा नाद अली पढ़ के उसको छुकारा मारो, सुबह दोपहर शाम और रात को। और सुबह का जो उठापन के बाद जो न्याज बच जाता है वो इसको पिलाओ। हजर इमाम ने उस पर रहम किया, अच्छी हो गई। पेट की बीमारी पर्टिकुलरली दिल की बीमारी, दिल से मेरा मतलब यह है मेंटल बीमारी, मेंटल वीकनेस, ये सुबह का जो न्याज है बच जाने के बाद है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए घटपाट की क्रिया पे बैठने वाले को कि जब भी मुखी साहब इजाजत देवे उत्थापन के लिए तो देखना चाहिए कोई प्याली खाली नहीं होनी चाहिए, तमाम प्यालियां भरी हुई होनी चाहिए और कुंभ के अंदर भी न्याज होना चाहिए, फिर उत्थापन की दुआ दो और ये चीजें जमात में बांटो, इससे बीमारियां दूर होती हैं। बाद में कायम करने की दुआ होती है और जमात खड़े होकर शुक्रगुजारी करती है। ये न्याज नूर है, हर रोज न्याज पिया करो। अगर कोई आदमी मुसाफरी में जाता है या ऐसी कि सुबह के वक्त न्याज नहीं मिल सकती उसको, तो बोतल में न्याज ले जाओ, बोतल में अपने घर में बच्चों को न्याज पिलाओ। हर सुबह पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद से बाहर आवे तो एक लाइन लगी होती थी, लड़के लड़कियां गुलाम वगैरह मर्द भी औरतें भी प्यालियां लेके खड़े हैं। नबी करीम बाहर निकले, सबके प्याले में हाथ डालता जावे, न्याज बनाता जावे, ये न्याज घर जावे। और वो लोग उस जमाने में चार कोने में अपने घर के चार कोने में न्याज का छाता देवे, लेकिन पहले बच्चों को पिलावे। मुसलमान भूल गए हैं, लिंक टूट गई है, हमारी लिंक चालू है, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर हमारे पास है। बहुत अदब से न्याज पियो। मैंने कभी कभी देखा है ऐसा प्याली उठाई मुंह पी लिया, लेफ्ट हैंड से प्याली पी ली, नहीं, ये बहुत नूरानी चीज है। सीधे हाथ से प्याली उठाओ, लेफ्ट हैंड से पकड़ के अपने राइट पाम में रख के ऐसा न्याज पियो। न्याज पीते वक्त कहो या मौला मुझे हकीकती समझ दे, ये दुआ इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाई है, या मौला मुझे हकीकती समझ दे। हमारे मिशनरियों में एक मिशनरी थी जाफर भाई भलवानी, वो भलवानी भंडोड़ की किताबें उसने लिखी है ना, मिशनरियों की मेहमानी थी, ये खड़ा हुआ, जाफर क्या है? खुदावन बहुत से लोग न्याज पीते हैं, लाइन में खड़े हैं, प्याली लेके लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं, पीछे वाले बेचारे इंतजार करते हैं, या मौला हमें ऐसी दुआ बता कि जिसमें सब दुआएं आ जाएं और शॉर्ट हो गए। जाफर जी सरकार, प्याली उठाओ, बोलो या मौला मुझे हकीकत ही समझ दे, फरमा। ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हमें बताया, पीछे वालों को चांस मिलना चाहिए। दुआ के अंदर भी मैंने बहुत देखा कई लोग जो है लालची हैं, दुआओं के लालची हैं, अच्छी बात है, लेकिन जमात खाने में और खास तौर पे ऐसी बड़ी जमात में, ह्यूस्टन में 3,000 की जमात है, दुआ कराने आते हैं। कई लोग जो है ना खीसे में अंदर मेहमान मुखी साहब कहते हैं या कमरिया साहब खाना बजान जो रूहानी पर खाना बजान बरंडे को मत पूरी करे रूहानी की असल में वासिल करे फिर निकाला ये वो रवे क्या है। इस तरह 5-6 दफा हाथ डालते हैं खीसे में, वो हाथ लेके हाथ में लेके एक ही वक्त में अपनी नियत करके दे दो। मैं घर से निकलता हूं तो उधर ही मैं मुझे आज क्या देना है, उधर इस सब चीजें निकाल के मुखी साहब के हाथ में रखा तो दूसरों का भी ध्यान रखो और हर वक्त खीसे में हाथ डाल के नवे नवे और फिर हाथ डाल के उंगलियों से देखते हैं कि ये 5 सेंट है कि 10 सेंट है। घर से निकलते वक्त अपनी नियत बांधो, इधर आके जो कुछ देना है मौला के कदमों में रख के दुआ मांगो, मुखी कमरिया दुआ देने के मुखिया नहीं कमरिया नहीं देवे। मजहब को सिंपल बनाओ और समझ के बनाओ। वो इमाम जो है ना लाइन में जब आदमी खड़ा होता है और नियत बांध लेवे तो उसकी नियत उधर से कबूल होती है। मैंने जमातों में ये भी कहा है कि अगर जब दुआ की लाइन में कि नियाज की लाइन में हो बातें मत करो, दिल में दुआएं मांगो, अपने गुनाह की माफी मांगो, दूसरों के हक में दुआएं मांगो, खसूस नियाज के वक्त। खुदा नखास्ता कोई यार दोस्त सगा कुटुंबी बीमार है या मान लो कि आपका सगा नहीं मगर इस्माइली भाई बहन है तो नियाज पीते वक्त जब भी बोलो कि या मौला हकीकती समझ दे तो नियत में कहो कि या मौला उसको अच्छा कर दे, उसको इसका फायदा होता है। और जब हम दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं मौला बहुत खुश होता है, दूसरों के लिए दुआ मांगने से मौला बहुत खुश होता है। जिस तरह हम पैसे की मदद करते हैं मोमिनों, इसी तरह से हम दूसरों के लिए जब दुआ मांगते हैं तो ये रूहानी मदद है उसको और वो उसको फायदा होता है। इतना ही नहीं बल्कि उसके दिल में आपके लिए अच्छे ख्यालात पैदा होते हैं। न्यास नूर है और इसकी कदर करके इसको पियो। अमी पावल न्यास ऐसे कई नाम रखे हैं हमारे पीरों ने नियाज के, पीरे कादी छे पावल हाथे, पीर शमस माँ बाप के हाथ, पीर शमस माँ बाप ने खुद ने नियाज निकाला तो गर्भियों में पावल नाम दिया पीरे कादी छे पावल हाथे। ये पावल है, पावल कहते हैं पाक करने वाला पानी। ए मोमिनो अपना जो मजहब है बहुत अच्छा मजहब है, अच्छे बनो पाक बनो, दगा फरेब शरारत झूठ दूसरे का हक खा जाना झूठी गवाही देना हमारा मजहब इजाजत नहीं देता। दिल की खुशियां जो है दिल का सुकून जो है वो करोड़ों से ज्यादा है, दिल का सुकून ही सब कुछ है। दोनों हजर इमाम जब सुनते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के यंगस्टर टीनेजर्स डॉलर के लिए इधर आते हैं अपने एजुकेशन छोड़ देते हैं, माँ बाप को पसंद नहीं, मौला नाराज होते हैं। हमारे मजहब में हक हलाल की कमाई करो, माँ बाप की सेवा करो। मैंने एक जगह कहा कि कुरान शरीफ ने कहा कि जो कबीरा गुनाह है वो बख्शे नहीं जाते किसी भी कीमत पर, कितनी भी इबादत करो माफी मांगो जो कबीरा गुनाह है वो बख्शे नहीं जाते। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हमें वो 10 कबीरा गुनाह बताए हैं, मैंने अभी जिक्र किया लेकिन आपको सुनाता हूं। इमाम की बयत करके जो आदमी तोड़ देता है या इमाम की बयत करके मजहब पे अमल नहीं करता, जमात करने नहीं आता, दुआ रस्म नहीं करता, उसने इमामत के साथ अपनी बयत तोड़ दी। मौला कहते हैं ये गुनाह माफ नहीं होता। जिसने अपने मां बाप को दुख दिया मौला कहते हैं ये गुनाह माफ नहीं होता। मुझे याद है एक मेहमानी में एक आदमी बैठा था, हसनाबाद में मेहमानी थी, मौला के बैठे मेहमानी में तो रो पड़ा। मौला पूछे क्या है? खुदावंद रोटी आगे है मैं पीछे हूं, यानी कि इतनी मेहनत करता हूं लेकिन पेट भर के खाना नहीं मिलता। दिलो जान का बादशाह है, सब कुछ जानता है। माँ बाप पूछते हैं तुमने माँ बाप को दुख दिया? कहता है खुदावंद मैंने उनको बहुत दुख दिया। माँ बाप हयात है? नहीं खुदावंद मर गए। माँ बाप उठ बैठे, अभी कयामत तक इंतजार करो, यानी तू कयामत तक दुखी ही रहने वाला है। बाप और मां की आशीष लो। नबी कहते हैं तेरी मां के पांव के नीचे जन्नत है, उसका मतलब यह है कि उसकी खिदमत करो। उसने 9 महीने तुम्हें उठाया, 3 बरस तक तुम्हारा दुख उठाया, दूध पिलाया, मां का हक कभी पूरा नहीं होता। मां की बहुत इज्जत करो। मैं जमातों में एक और चीज भी कहा करता हूं कि मां औरत है, बीवी औरत है, बहन औरत है, बेटी औरत है, मामी है, दादी है, नानी है, चाची है। मां कोई भी रूप में है, किसी भी रिलेशनशिप में है औरत। जिस फैमिली में औरत की इज्जत नहीं उस फैमिली में बरकत नहीं। औरत को खुदा ताला ने बड़े प्रेम से बनाया है, मासूम बनाया है। अगर औरत बिगड़ भी जाती है तो उसमें ज्यादा हाथ मर्द का होता है। वो मर्द उसका हस्बैंड होवे, बेटा होवे, के भाई होवे, के बाप होवे। औरत को खुदा ने अच्छा बनाया है, उसके दिल में रहम डाला है, दया डाली है। औरत सॉफ्ट है क्योंकि औरत ही का रूप है कि जो पीर का रूप है। पीर माए बाप मां है। मां कोई भी कीमत से अपने बच्चे पर जुल्म नहीं देख सकती। तो मौला कहते हैं जिसने अपने मां बाप को दुख दिया ये गुनाह कभी नहीं बख्शा जाएगा। बाप की इज्जत करो क्योंकि वो अपना खून पसीना बहा के रोजी कमा के लाता है और तुम्हारा पेट पालता है। बाप और मां ये दोनों खुदा ताला कुरान पाक में कहता है जब तेरे मां बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने अदब से खड़े रहो, जोर से बात भी मत करो। 3 जगह खुदा ताला ने मां बाप की खिदमत के लिए, इज्जत के लिए हुक्म किया है। तो ये दूसरा गुना, मां बाप को दुख देने वाला माफ नहीं होता। तीसरा गुना ये है किसी आदमी ने झूठी गवाही दी, पैसे लेके या कोई कारण से कुरान या बाइबल उठाई, कसम खाई और झूठ बोला, झूठी गवाही। अल्लाह ताला बहुत गुस्सा करता है इसके ऊपर। झूठी गवाही देने वाले का गुनाह माफ नहीं होता। एक आदमी के पास किसी ने अपना पैसे रखे, बहुत दफा गरीब आदमी किसी मालदार के पास ट्रस्ट रख लेते हैं। वो जमाने में बैंकें नहीं थी। तो अल्लाह कहता है कि किसी का ट्रस्ट तुमने उचापत की तो वो गुनाह माफ नहीं होगा। अल्लाह कहता है कि जो आदमी रेप करता है, जना बिल जबर, वो माफ नहीं होता। अल्लाह कहता है किसी ने बेवा, बेवा यानी विधवा, विडो का या यतीम का माल खाया है, वो माफ नहीं होता। अल्लाह कहता है तुमको जो इल्म देता है उसको दुख दोगे तो ये दुख रहेगा तुम्हारे साथ, ये दुख माफ नहीं होगा। अल्लाह कहता है कि तुमने किसी आदमी की इज्जत खराब करने के लिए झूठा अल्जाम लगाया, खोटा आरोप लगाया, खुदा कहता है मैं बहुत नाराज होता, ये माफ नहीं होता। डरो खुदा से किसी के ऊपर झूठा अल्जाम न लगे। अल्लाह कहता है जिसने अपनी औलाद को दुख दिया, जिस तरह मां बाप को दुख देने का ऐसा ही हुक्म ये है, औलाद को दुख देना शराब पीता है, सिगरेट पीता है, जुगार खेलता है और बच्चे बेचारे तड़प रहे हैं, उस मूर्ख को पता नहीं कि वह गुनाह उसका माफ नहीं होगा। और दसवां गुनाह यह है कि जो आदमी आपघात करे, सुसाइड करे, वो 5000 बरस, अकबीर कहते हैं 5000 बरस तक अवगतिया रहे, पनिश मिले उसका, वो गुना माफ नहीं होता। ऐ मोमिनो, मजहब हमारी जिंदगी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी है और कोड ऑफ लाइफ है। अगर हम अपने मजहब के अमल पे चलें, हाँ दुनिया में भी हमें जन्नत मिले, सुख शांति मिले, आखिरत में भी जन्नत मिले। तो मैंने आपको यह अरज की कि पिसद्दीन कहते हैं, हाजर जोमा ने पांव पड़ी वधावत कायम स्वामी, इसकी पूजा करो, इसके पांव पड़ो, इसका हुक्म मानो और हमेशा इसकी तारीफ करो, दिनों दुनिया में आबाद और सुखी बनो, सुखी रहो, आबाद रहो, तंदुरुस्त रहो। बोला आपकी नेकियों को कबूल करे, बदियों बुराइयों से बचावे, दसबंदी सुख रीति बनाए, ईमान आपका ज्यादा करे, आपके ऊपर मौला राशी होवे, आपकी आल औलाद को मौला अपने चरण में रखे, हर बदी बुराई से बचाए, शैतान को दूर रखे, कल युग की खराबियों से दूर रखे, दीन और दुनिया की बरकतें देवे, आपकी रोजी कमानी में बरकत देवे, आपके दुख दर्द दूर करे, आपके पर हमेशा मौला राजी रहे, अपनी छत्र छाया में रखे। है जिंदा।